Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next, you need the team to act on feedback fast. So you turn all those retro notes into Jira tasks.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
For a limited time, visit Miro.com/retro now for a free business plan trial to unlock advanced retro tools like private mode, voting, and two-way Jira syncing. That's Miro.com/retro now.
आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HD स्मार्टकास्ट।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
हार और जीत तो राजनीति का हिस्सा, आखिरी कैबिनेट बैठक में बोले नरेंद्र मोदी। निवर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग बुधवार को की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया। अब वह 8 जून को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले सकते हैं। इस बीच उन्होंने आखिरी कैबिनेट में अपने सहयोगियों से कहा कि हार और जीत तो राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है। कैबिनेट की मीटिंग में चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा हुई। इस मीटिंग में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई और पीएम समेत पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। इस बैठक के बाद पीएम सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचे और द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और कहा कि आप नई सरकार के गठन तक अपने मंत्रियों के साथ कामकाज संभालते रहें। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने पर नरेंद्र मोदी के 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार मोदी के साथ साथ उसी दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के भी शपथ लेने की संभावना है। इस बीच बुधवार को सुबह यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में श्री मोदी ने मंत्रियों के साथ लोकसभा चुनाव के परिणामों तथा राजग को बहुमत मिलने के बाद सरकार के गठन पर चर्चा की। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। इस बीच राजग की आज शाम को यहां महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और महत्वपूर्ण घटक दलों तेलुगु देशम पार्टी तथा जनता दल यू के नेता यहां पहुंच गए हैं। बैठक मोदी की अध्यक्षता में होगी तथा इसमें एन चंद्रबाबू नायडू तथा नीतीश कुमार सहित अन्य नेता शामिल होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश, कमजोर नतीजों की ली जिम्मेदारी, बोले हम चूक गए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के अच्छा प्रदर्शन न कर पाने की जिम्मेदारी ली है और इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें महाविकास अघाड़ी की 3 पार्टियों के अलावा एक नैरेटिव से भी लड़ना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं नेतृत्व से मांग करूंगा कि मुझे सरकार के कामकाज से मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा, मैं भागने वाला आदमी नहीं हूं, इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। जनता के बीच जाएंगे और नए सिरे से काम करेंगे। फडणवीस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भाजपा के संगठन को मजबूत करने में लग जाऊं। देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा की महाराष्ट्र इकाई की मीटिंग के बाद यह बात कही। बुधवार को ही भाजपा नेताओं की मीटिंग हुई थी, जिसमें लोकसभा चुनाव में आए नतीजों पर मंथन किया गया। राज्य में भाजपा को महज 9 सीटों पर ही जीत मिली है, जबकि 2019 में भाजपा को राज्य में 23 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा को इस बार लोकसभा चुनाव में 240 सीटें ही मिली हैं। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों में भाजपा को करारा झटका लगा है। इन्हीं राज्यों से उसे इतना झटका लग गया है कि वह बहुमत से चूक गई। भाजपा में तो वह महज 33 पर ठहर गई, जहां 2019 में वह 62 सीटें जीती थी। इस मीटिंग में डिप्टी सीएम फडणवीस के अलावा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद थे। मीटिंग में विस्तार से हार के कारणों पर चर्चा की गई। इस बार राज्य में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने मिलकर 17 सीटें जीती हैं। 48 सीटों वाले राज्य से यह आंकड़ा काफी कम है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है। तीनों दलों ने मिलकर 30 सीटों पर जीत हासिल की है। गौरतलब है कि राज्य में एनडीए ने 45 सीटों पर जीत का टारगेट तय किया था। नतीजा उसके एक तिहाई के करीब ही रहा। कांग्रेस को महाराष्ट्र में कुल 13 सीटें मिली हैं, जो 2019 के उसके प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी सफलता है। पॉलिटिकल प्रेशर को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान, बोले 24 सालों में कभी भी मुझे। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई ने डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है। वहीं न्यायाधीश व्यवस्था की रक्षा करने वाले संवैधानिक मूल्यों को सतत बनाए रखने की भावना को प्रदर्शित करते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ मंगलवार को प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में समाज में निर्णायकों की मानवीय भूमिका के विषय पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने इस दौरान न्यायिक प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ की जाने वाली कुछ अनुचित आलोचनाओं को रेखांकित करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश ने इस बात पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी का समग्र प्रभाव न्यायपालिका को समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचने में मदद करना है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ किया है कि उन्हें कभी भी पॉलिटिकल प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने भारत के आम चुनावों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, चुनाव संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है। भारत में न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते और इसका एक कारण यह भी है कि न्यायाधीश हालातों और संवैधानिक मूल्यों को सतत बनाए रखने की भावना को प्रदर्शित करते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, लोकतंत्र में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें हम परंपरा की भावना को प्रदर्शित करते हैं और साथ ही इस भावना को भी प्रदर्शित करते हैं कि एक अच्छे समाज का भविष्य कैसा होना चाहिए। निर्णय सुनाते समय उन्हें जिन राजनीतिक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा, उसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, न्यायाधीश के रूप में मेरे 24 वर्षों के कार्यकाल में मुझे कभी भी राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा, हमारा जीवन सरकार की राजनीतिक शाखा से बिल्कुल अलग है, लेकिन स्पष्ट रूप से न्यायाधीशों को अपने निर्णयों के व्यापक राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव से परिचित होना चाहिए। यह राजनीतिक दबाव नहीं है, बल्कि न्यायालय द्वारा किसी निर्णय के संभावित प्रभाव की समझ है। वहां मौजूद विद्यार्थियों ने सीजेआई चंद्रचूड़ से पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय की ओर से विशेष विवाह अधिनियम पर सुनाए गए फैसले के बारे में सवाल पूछा, जिसमें भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के खिलाफ फैसला सुनाया गया था। उन्होंने कहा, मैं यहां फैसले का बचाव नहीं करूंगा, क्योंकि एक न्यायाधीश के तौर पर मेरा मानना है कि एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद यह न केवल राष्ट्र की बल्कि वैश्विक मानवता की पूंजी बन जाता है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत से कोर्ट का इनकार, अभी जेल में ही कटेंगे सीएम के दिन। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। एक तरफ कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत से इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ न्यायिक हिरासत 14 बढ़ाने का आदेश दिया। बुधवार को वर्चुअल पेशी के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्होंने 2 जून को दोबारा सरेंडर किया। कोर्ट ने उस दिन उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बुधवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ से ही कोर्ट के सामने पेश किया गया। स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल की उस अंतरिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया जिसे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दायर किया था। केजरीवाल ने कुछ मेडिकल चेकअप्स के लिए 7 दिनों की राहत मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि उनकी जांच के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। बाबर आजम कोई एमएस धोनी नहीं जो उसको वापस बुला लिया। पाक ओपनर्स लाइव टीवी पर भिड़े। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 से लेकर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम में काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली। भारत में हुए वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के दबाव के बाद बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शाहीन अफरीदी को टी20 टीम की कप्तानी सौंपी गई, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से कुछ समय पहले एक बार फिर से बाबर को लिमिटेड ओवर फॉर्मेट की कप्तानी सौंप दी गई और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम बाबर की कप्तानी में खेलने उतर रही है। पाकिस्तान के 2 सीनियर ओपनर अहमद शहजाद और इमाम उल हक के बीच इस बात को लेकर एक लाइव शो के दौरान जबरदस्त कहासुनी हो गई। जियो टीवी पर टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर चल रहे शो में शहजाद और इमाम उल हक दोनों मौजूद थे। शहजाद ने जमकर पीसीबी और बाबर पर अपना गुस्सा निकाला और कहा, बाबर आजम की बात करूं तो दोस्ती यारी की बात है। देखिए वो कुछ खिलाड़ियों को बहुत लंबे समय से ढो रहा है और वो खिलाड़ी बहुत लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म है, यह अच्छा नहीं लगता है। इमाम इन सब बातों से काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा, बाबर को बिना उनकी मर्जी से कप्तानी से हटाया गया था और बिना उनकी मर्जी के कप्तानी सौंपी गई, फिर से बोर्ड ने उन्हें दोबारा कप्तान बनाया है। 2021 में हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे और 2022 टी20 वर्ल्ड कप में हम फाइनल तक पहुंचे थे। इसका मतलब है कि टीम ने अच्छा किया, हम फाइनल में नहीं चमक पाए। आप कह सकते हैं कि बाबर आजम को कुछ खिलाड़ी पसंद है, लेकिन दोस्ती के चलते वो टीम में है, यह कहना निजी हमला है।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HT Smartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next, you need the team to act on feedback fast. So you turn all those retro notes into Jira tasks.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
For a limited time, visit Miro.com/retro now for a free business plan trial to unlock advanced retro tools like private mode, voting, and two-way Jira syncing. That's Miro.com/retro now.